विश्व दर्पण। श्रोताओ, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे यमन युद्ध की। यह युद्ध पिछले 3 साल से अधिक समय से जारी है और अब इस युद्ध का 4th साल शुरू हो चुका है। मार्च 2015 से ये युद्ध चल रहा है। यमन सऊदी अरब की दक्षिणी सीमा से मिला हुआ देश है, जिसकी आबादी लगभग 2.5 करोड़ है। सऊदी अरब ने कई दशकों से ये कोशिश की कि अपने पड़ोसी देशों में अपनी इच्छा के अनुसार सरकारों का गठन करवाए, ताकि अरब जगत और इस्लामी जगत के अगुआ के रूप में खुद को स्थापित रखे और अपनी इस पोजीशन के आधार पर क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में दुनिया की बड़ी शक्तियों से बारगेनिंग कर सके। सऊदी अरब के पास तेल के बड़े भंडारों ने इस संदर्भ में उसकी मदद की। सऊदी अरब अपने धन बल से कई देशों को दबाने में सफल रहा, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि सऊदी अरब को चुनौती भी मिलती रही। इस्लामी जगत और अरब जगत की सतह पर देखा जाए तो इस्लामी गणतंत्र ईरान, तुर्की और मिस्र, इराक, लीबिया जैसे देशों ने सऊदी अरब को हमेशा चुनौती दी। जिन देशों की सरकारें सऊदी अरब के खेमे में शामिल हो गईं, वहां भी जनता के बीच इस संदर्भ में असंतोष देखने में आया। यमन भी उन देशों में है जिन्हें सऊदी अरब ने हमेशा अपना अनुसरण करने पर मजबूर करने की कोशिश की। यमन की पूर्व अली अब्दुल्ला सालेह तानाशाही सरकार को सऊदी सरकार ने हमेशा दबा कर रखा, मगर यमन में कभी भी जनता ने इस वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया। इस समय यमन की लड़ाई का भी सार यही है। सऊदी अरब ने अली अब्दुल्ला सालेह की तानाशाही सरकार गिर जाने के बाद ये कोशिश की कि यमन में नई सरकार सऊदी अरब की इच्छा और अनुमति के अनुसार बने, लेकिन हालात का रुख बदल गया। स्थानीय संगठनों ने अन्य क्षेत्रों के साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी गतिविधियां तेज की और सत्ता में न्यायोचित भागीदारी का फॉर्मूला तेजी से आगे बढ़ने लगा। इससे पहले अपदस्थ राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह से सऊदी अरब के संबंधों में काफी कड़वाहट आ चुकी थी। दूसरी ओर यमन के पटल पर अंसारुल्ला आंदोलन सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे बड़े जनाधार वाले संगठन के रूप में उभरा। अंसारुल्ला आंदोलन वो संगठन है जिसके खिलाफ सऊदी अरब ने बीते वर्षों में तानाशाह अली अब्दुल्ला सालेह के साथ मिलकर 6 युद्ध लड़े थे। नए परिदृश्य में अली अब्दुल्ला सालेह ने सऊदी अरब से संबंध खराब हो जाने के बाद अंसारुल्ला से गठजोड़ कर लिया। बाद में अली अब्दुल्ला सालेह ने सऊदी अरब से पुनः सांठगांठ की और अंसारुल्ला को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन अंसारुल्ला के लड़ाकों ने आनन फानन में सालेह को ढेर कर दिया, जबकि सालेह की पार्टी का अंसारुल्ला आंदोलन से गठबंधन जारी रहा। कुछ लोग पार्टी से अलग हो गए, लेकिन इसका गठबंधन पर असर नहीं पड़ा। इन परिस्थितियों को देखते हुए सऊदी अरब ने इमारात जैसे कुछ घटकों के साथ मिलकर दक्षिणी यमन को अलग करने की कोशिश की। दक्षिणी यमन का केंद्रीय नगर अदन है। इस इलाके में सऊदी अरब और इमारात के बीच प्रतिस्पर्धा चल पड़ी, जो लड़ाई में बदल गई और दोनों पक्षों के बहुत से लोग मारे गए। इस समय इस इलाके में इमारात की स्थिति मजबूत है और सऊदी अरब जिन नेताओं का समर्थन कर रहा है वो दक्षिणी यमन में कदम नहीं रख पा रहे हैं, बल्कि सऊदी अरब की राजधानी रियाज में निर्वासन का जीवन बिता रहे हैं। सऊदी अरब ने यमन के अन्य भागों पर जमकर बमबारी की है, जिसके नतीजे में 10,000 से अधिक यमनी नागरिक मारे गए हैं और 30,000 से अधिक घायल हुए हैं। सऊदी अरब ने यमन के अस्पतालों, स्कूलों, आवासीय क्षेत्रों, मस्जिदों, सांस्कृतिक केंद्रों को निशाना बनाया और पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त करके रख दिया। सऊदी अरब के इन हमलों की वजह से विश्व स्तर पर उसकी निंदा की जाने लगी। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सऊदी अरब की कड़े शब्दों में आलोचना की है।
And as you will have seen, we issued a statement last night expressing the Secretary General's concern about the continued intense airstrikes and ground fighting in Yemen, despite his repeated calls for a cessation of hostilities. In this regard, he strongly condemned the apparent airstrikes on February 27th that hit Khalik Market in Nahem District in Sana'a, which killed approximately 32 civilians and injured 41. The Secretary General expresses his sincere condolences and sympathies to the families of the victims and calls for a prompt and impartial investigation of this incident. The Secretary General also reiterates his call on all parties to the conflict in Yemen to engage in good faith with his special envoy in order to agree on a cessation of hostilities as soon as possible and to convene a new round.
दूसरी ओर यमन में सेना और जनता की ओर से जोरदार प्रतिरोध देखने में आया। यमन की सेना और स्वयंसेवी बलों ने मिलकर सऊदी गठबंधन के हमलों का सामना किया और सामना करने के साथ ही साथ हमलावरों को नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर दिया। अब जब युद्ध का चौथा साल शुरू हुआ है तो यमन की जनता और स्वयंसेवी बलों के जवाबी हमले और भी तेज हो गए हैं। अंसारुल्ला आंदोलन ने चौथे साल को बैलिस्टिक मिसाइलों का साल घोषित किया है और इसके साथ ही सऊदी अरब पर मिसाइल हमले तेज हो गए हैं। शुरू के 3 वर्षों में यमनी सेना और अंसारुल्ला ने मिसाइल हमले थोड़े थोड़े अंतराल के साथ किए, लेकिन चौथे साल में मिसाइल हमले बहुत तेज हो गए हैं। कुछ टीकाकार ये कहते हैं कि यमन की सेना और स्वयंसेवी बलों के पास मिसाइल मौजूद थे, लेकिन ये रूस द्वारा निर्मित काफ़ी पुराने मिसाइल थे जिन्हें सऊदी अरब के खिलाफ प्रयोग कर पाना कठिन था, इसलिए मिसाइल यूनिट ने इन मिसाइलों को अपग्रेड किया और 3 साल के दौरान थोड़े थोड़े अंतराल से जो हमले हुए वो मिसाइल परीक्षण के लिए थे और अब यमन ने अपनी मिसाइल ताकत काफ़ी बढ़ा ली है, जिसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब के नरेश शाह सलमान ने हाल ही में अरब लीग की बैठक में भाषण देते हुए कहा कि यमनी मिसाइल सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने इस भाषण में कई झूठ बोले, एक झूठ ये भी था कि यमन ने मक्के पर मिसाइल फायर किए हैं। शाह सलमान ने यह निराधार आरोप लगाकर यमन की मस्जिदों पर सऊदी अरब के हमलों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। यमन के अंसारुल्ला आंदोलन के बारे में सारी दुनिया जानती है कि वो धार्मिक स्थलों का सम्मान करने वाले लोगों का संगठन है। अलबत्ता इस संगठन को ये अच्छी तरह पता है कि सऊदी अरब के हमलों का जवाब कैसे देना है। आंदोलन के प्रमुख सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम जानते हैं कि सऊदी अरब की दर्द की जगहें कहाँ हैं।
بمنظوماتنا الصاروخية المتطورة والمتنوعة التي تخترق كل وسائل الحماية الأمريكية وغير الأمريكية، بمنظومة بدر، بمنظومة بركان، بمنظومات أخرى وأخرى.
سعودي عرب एक ओर युद्ध में उलझा हुआ है और दूसरी ओर आंतरिक स्तर पर सत्ता में खींचतान मची हुई है। इस धनी देश में भारी आर्थिक संकट है, जिससे ध्यान हटाने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जनता को फुसलाने वाले बदलाव कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या का हल नहीं है। ये कहना है सऊदी अरब के वरिष्ठ टीकाकार जमाल खाशिख जी का।
चेंज इज हैपनिंग बट द टॉप डाउन अप्रोच कुड बी रिस्की। आई थिंक द लीडरशिप इन सऊदी अरेबिया इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द सक्सेस और द मॉडल ऑफ दुबई। It is a success there in Dubai, but it cannot be duplicated. Saudi Arabia is not a city-state. It is a country. The Crown Prince has under his hand millions of youth who are looking for jobs. He provided for them entertainment and fun and cinemas, but they need money to enjoy life, so they need jobs. The jobless in Saudi Arabia number are about 20% of the population. Then we are talking about something like 2 million people who need jobs desperately. So he needs to spend more time there because those are the people who could get angry one day. They don't have the jobs.
पाकिस्तान के वरिष्ठ बुद्धिजीवी अहमद नूरानी का कहना है कि सऊदी अरब वास्तव में साम्राज्यवादी शक्तियों की खुशामद में लगा हुआ है।
अभी तक सऊदी अरब और उसके तमाम तर इत्तेहादियों को कोई ख़ास कामयाबी यमन में हासिल नहीं हो सकी। दुनिया का एक उसूल है कि जो कौम खुद जिंदा रहने का फन जानती हो और अपनी आज़ादी के तहफ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करना जानती हो, दुनिया की कोई ताकत उस कौम को शिकस्त हरगिज़ हरगिज़ नहीं दे सकती। सऊदी अरब ने यमन में जो जारहियत का सिलसिला शुरू किया सिर्फ अपने मकसद के हुसूल के लिए कि उसकी बालादस्ती कायम रहे और तागूती ताकतों को खुश करने के लिए। ہزاروں انسانوں کو ابدینی سلا دیا اور دسیوں ہزار بچے اپاہج ہو گئے، معذور ہو گئے، بدترین قلت غذا کی وہاں ہے، پینے کا پانی میں اثر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قوم کھڑی ہوئی ہے اور جس طرح انہیں موقع ملتا ہے وہ اپنے حملوں میں تیزی لے آتے ہیں. بیلسٹک میزائل جو ان کے پاس موجود ہیں وہ انہیں بھی وقتاً فوقتاً اپنے ہدف کی طرف استعمال کرتے ہیں، گو کہ ان کو توڑنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے اور بدترین جارحیت ان کے اوپر نافذ کر دی گئی، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے مخالفین کو کسی بڑی کامیابی کی طرف بڑھنے نہیں دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقوق انسانی کی تنظیمیں کہاں ہیں، عالمی ادارے کہاں ہیں؟ مشرقی تیمور میں فوری طور پر فیصلہ ہو سکتا ہے، دیگر علاقوں میں فوری فیصلہ ہو سکتا ہے، تو آخر یمن کے، شام کے اور دیگر ملکوں کے بحران کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہاں ایک جارحیت جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے، لیکن یمن کی قوم نے یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ اپنی زندگی تو قربان کر دیں گے لیکن کسی جارحے کو اپنے اوپر فاتح بن کر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. تو اس لیے سعودی عرب بری طرح وہاں ناکام رہا ہے.
یہ طے ہے کہ سعودی عرب یمن میں ایسی جنگ لڑ رہا ہے جسے وہ جیت نہیں سکتا، بلکہ اس لڑائی سے سعودی عرب کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے. اب تک کی نیتیوں کا جو نتیجہ نکلا ہے اس سے سعودی عرب کو پارٹ لینے کی ضرورت ہے، مگر وہ پارٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. شاید اس کا ایک کارن محمد بن سلمان کی انبھو ہینتا ہے.